हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 180। शिविका कार से अपने ऑफिस जा रही है और इस वक्त उसका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है। वो पीछे बैक सीट पर बैठी हुई है। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होता है और उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉलर आईडी पर रुद्र का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई, क्योंकि रुद्र हमेशा ज्यादातर फालतू की बात और बकवास करने के लिए ही उसके पास कॉल करता है। उसे शिविका से ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी काम नहीं होता जल्दी, इसीलिए शिविका उसका फ़ोन कॉल रिसीव भी नहीं करना चाहती। लेकिन फिर कुछ सोचकर आखिर वो रुद्र का कॉल रिसीव कर लेती है। हाँ रुद्र, बोलो, क्या हुआ? अब कौन सी आफत आ गई? शिविका ने वैसे ही हमेशा की तरह रुद्र से बात करते हुए कहा। तो रुद्र ने मुंह बनाकर बोला, यार कभी तो ठीक तरह से बात कर लिया कर, मुझे क्या हमेशा ही इस तरह से इंसल्ट करना ज़रूरी होता है? ये मेरा ठीक से ही है, तू बोल, अब नहीं तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ, शिविका ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। तो रुद्र फिर से शिकायत करता हुआ बोला, हाँ, ताने मारने से सीधा धमकी देने पर आ गई, सही है। फ़ोन क्यों किया था ये बता, शिविका सीधे ही पूछा। तो दूसरी तरफ से रुद्र को एकदम से याद आया तो उसने कहा, अरे हाँ वो सुन, तू अभी घर पर ही होगी ना, मेरी उससे बात करवा दे। उससे? किससे? शिविका ने कन्फ्यूजन से पूछा। रुद्र ने सीधे ही हर्षिता का नाम लेते हुए कहा, अरे वो हर्षिता से, वो भी घर पर है ना, लेकिन वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। आई थिंक शायद उसके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी, उसका कॉल लग नहीं रहा है। रुद्र ने ये बात बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बोली, लेकिन शिविका उसकी ये बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि रुद्र को हर्षिता से क्या बात करनी थी ये उसे समझ नहीं आया। इसीलिए शिविका ने इस तरह से चौंकते हुए रुद्र से पूछा, हर्षिता से? क्यों, क्या बात करनी है तुम्हें उससे, मुझे बताओ पहले। शिविका ने इस तरह रुद्र पर शक करते हुए उसे ये बात पूछी। तो आप जाकर रुद्र को अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उसने अपने सिर पर हाथ मारा और फिर बात संभालते हुए बोला, हाँ वो उसे अपने कंपटीशन को लेकर कुछ हेल्प चाहिए थी और इन्फॉर्मेशन भी, तो बस वही वही बताने के लिए फ़ोन कर रहा था मैं। रुद्र हर्षिता से कई बार मिल चुका है इवेंट के बाद से, तो उसे इस बारे में पता है कि हर्षिता फ़िलहाल क्या कर रही है और यहाँ पर क्या करने आई है। उसने जब हर्षिता को इवेंट में मॉडल के रूप में देखा था तब से रुद्र काफ़ी अट्रैक्टेड है, या फिर शायद उससे पहले से ही, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से हर्षिता से मिलता रहता है। और शिविका अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स और उलझन में थी, इसीलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका कॉम्पिटिशन? लेकिन तुम्हें उसे बारे में क्या पता चल गया जो उसे बताना है? और उसने सच में तुमसे हेल्प मांगी थी क्या? मुझे क्यों नहीं कुछ बोला? शिविका ने फिर से सवाल किया। रुद्र उसके इतने सवालों से थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, अरे तुम खुद ही इतना बिजी रहती हो, ऑफिस, घर, काव्या, और अभी अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो इतनी समझदार लड़की है, शायद इसीलिए उसने तुम्हें परेशान नहीं किया, और मैं तो बस खुद ही उससे पूछा था तब उसने मुझे बता दिया, नहीं तो शायद वो मुझे भी हेल्प नहीं लेती। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आंसर राउंड बंद करो, और अगर घर पर हो तो फ़ोन दो ना उसे, क्या टाइम पास कर रही हो, या तो फिर उसे बोल दो कि मुझे कॉल बैक करें। रुद्र की बात सुनकर शिविका ने भी आगे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि रुद्र पर भी वो काफ़ी भरोसा करती है और उसे पता है हर्षिता के साथ रुद्र कुछ भी गलत नहीं करेगा। रुद्र के सवाल का जवाब देती हुई शिविका बोली, अरे वो मैं बात नहीं करवा पाऊंगी उसे, क्योंकि मैं खुद भी अभी घर पर नहीं हूँ और हर्षिता भी यहाँ से निकल गई है, वो कॉम्पिटिशन स्टूडियो गई होगी शायद, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन क्या बताना है तुम्हें उससे, तो मुझे। शिविका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्र ने दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हुए शिविका ने अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और बोली, अजीब ही है ये लड़का, पूरी बात भी नहीं सुनी मेरी। कुछ देर बाद शिविका ऑफिस पहुंच गई और करण भी काव्या के प्रीस्कूल से सीधा ऑफिस आ गया, लेकिन वो बाहर अपनी डेस्क पर ही बैठ गया, क्योंकि शिविका इस वक्त कंपनी के इन्वेस्टर के साथ मीटिंग रूम में थी और उसके ऑफिस आने से पहले ही उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए ही करण वहां पर नहीं गया, क्योंकि उसके ऐसे बीच मीटिंग में जाने की वजह से सब डिस्टर्ब होते और शिविका ने उसे इस बारे में बताया भी नहीं था। अपनी सीट पर बैठा हुआ करण बार बार पीछे मुड़कर मीटिंग रूम की तरफ ही देख रहा है, तभी उसकी डेस्क पर किसी ने हाथ से टैप करके उसका ध्यान अपनी तरफ किया, तो करण ने उसे तरफ देखा और वहां पर सामने स्नेहा खड़ी थी। हे हैंडसम, क्या बात है, उस तरफ तो बार बार ऐसे देख रहे हो जैसे कि तुमने मैडम को गलती से गलत प्रेजेंटेशन वाली फाइल भेज दी हो, करण को ऐसे टेंशन में देखकर स्नेहा ने उससे पूछा, और वो अब तक उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त और फेलो वर्कर बन गई है, तो उसकी करण से काफ़ी अच्छी बनती है और वो अक्सर उसे हॉट हैंडसम कहकर बुलाती रहती है। करण भी इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है स्नेहा की सगाई हो चुकी है और वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करती, बस उसे टीज करने के लिए ये सब बोलती है। उसकी बात पर करण ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अरे नहीं, मैं बस ये सोच रहा था, ऐसे अचानक से बोर्ड मीटिंग, सब कुछ ठीक है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे भी आ जाने में थोड़ा सा लेट हो गया। करण की ये बात सुनकर स्नेहा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, कम ऑन करण, तुम इस बात को लेकर टेंशन में हो, इस तरह की सरप्राइज मीटिंग तो होती ही रहती है कंपनी में, लेकिन तुम सच में कभी कभी इस तरह से बिहेव करते हो जैसे कि तुम्हारी ही कंपनी है, इतना कौन सोचता है? करण थोड़ा सा अटकते हुए बोला, अरे मेरी नहीं बट हम सब की कंपनी है, आखिर हम यहाँ काम करते हैं तो मुझे तो टेंशन हो जाती है, तुम लोगों को नहीं होती? करण के इस सवाल पर स्नेहा ने नहीं में अपना सिर हिलाया और बोली, रिलैक्स करो ना थोड़ी देर, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो पता चली जाएगा और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई टेंशन वाली बात है, स्नेहा ने करण को समझाया तो करण भी उसकी बात पर हरकसा मुस्कुराया और उसने नॉर्मल लगने की पूरी कोशिश की जबकि उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। क्रमशः